السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. रमज़ान का ये प्यारा महीना दुआओं का महीना है। इसमें दुआएं बहुत ज़्यादा इंसान की कबूल होती हैं, बल्कि हमारे जो असलाफ थे वो अपनी दुआओं को भी इस महीने के लिए ख़ास तौर पे संभाल के रखते थे कि इस महीने में चूंकि दुआएं कबूल होती हैं तो हम इस वक्त दुआएं मांगेंगे। तो आज हम देखते हैं कि दुआ मांगने का तरीका क्या है, और वो तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, अगर हम उस तरीके से दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुआ की कबूलियत के ज़्यादा चांस होंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई दुआ करे तो उसका आगाज़ अल्लाह ताला की हम्द के साथ और उसकी सना से करें। तो यानी आप समझ जाएं कि जब आपने दुआ शुरू करनी है तो अल्लाह ताला की खूब खूब हम्द सना बयान करनी है। आज मैं आपको वो ज़िक्र भी बताऊंगी जो अल्लाह ताला की हम्द बयान की गई है उसके अंदर, उसके बाद भी दुआ कबूल होती है। इसी तरह जो मैंने आपको सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर बताया था, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, ये सारे अज़कार वो हैं जिनके बाद भी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है। और खैर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ये वाला तो जो तीसरा कलमा जिसको हम कहते हैं, ये तो अल्लाह ताला को वैसे ही बहुत महबूब है। तो जब आप अल्लाह ताला की हम्दो सना करेंगे ना, तो आपको वैसे ही अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, आप उसकी मोहब्बत के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अपनी मदह और तारीफ़ अल्लाह ताला को पसंद है, यानी अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है कि एक बंदा उसकी हम्द बयान करे। और उससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज कौन से हो सकते हैं अल्लाह ताला की हम्द बयान करने के, जो या तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिए या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए। और अब बाकी जो लोगों ने खुद से बनाए हुए बड़े अच्छे जुमले, बड़े खूबसूरत जुमले अल्लाह ताला की तारीफ़ के, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने जो खुद बता दिए उनसे ज़्यादा आगे नहीं हो सकते, उनसे बेहतर कोई और अल्फाज नहीं हो सकते। हमारी ज़ुबान भी नाकिस, हमारा इल्म भी नाकिस, हम जो अपनी ज़ुबान से कितने भी अच्छी तरह से बोलना चाहेंगे ना, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना चाहें, तो हमसे उस तरह से हो ही नहीं सकती जैसे अल्लाह ताला ने खुद अपने लिए बयान फरमा दी। लिहाजा अल्लाह ताला की हम्द उसके बताए हुए अल्फाज के साथ या उसके नबी ने जो अल्फाज बयान कर दिए उनके साथ उसकी तारीफ़ हम बयान करें तो वो बेस्ट है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, सूरतुल हदीद है, उसकी शुरू की जो आयात हैं, 6 आयात, आप वो उनके अंदर देखेंगे सारी अल्लाह ताला की तारीफ़ है। आयतुल कुर्सी भी अल्लाह ताला की तारीफ़ है, इस तरह सूरह इखलास में भी अल्लाह ताला की पहचान है, उसकी तारीफ़ है, इसी तरह ये जो तस्बीहात हैं इनमें अल्लाह ताला की बहुत प्यारी तारीफ़ है। तो इनको पहले बयान करें, जल्दी ना करें दुआ करने में, पहले आप टेक योर टाइम, पहले आप खूब अल्लाह ताला की हम्द बयान कीजिए, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें। देखिए बहुत सारी जगह पे आप देखते हैं लिखा होता है अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ के ये दुआ करें, तो लोग समझते हैं क्या बस दरूद शरीफ शुरू में पढ़ लिया, एंड में पढ़ लिया, बस काम हमारा मुकम्मल हो गया। नहीं, आप पहले हम्द बयान करें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद अपनी दुआ का आगाज़ कीजिए। और ये ना समझें कि अल्लाह ताला को आपकी कोई हम्द बयान करने की कोई ज़रूरत है, उसका वो मोहताज नहीं है। अगर सारी दुनिया उसकी हम्द बयान करे ना, सारे जिन, सारे इंसान, सारे फरिश्ते सब मिलके भी उसकी हम्द बयान करें, तो अल्लाह ताला की बादशाहत में ज़र्रे बराबर भी इजाफा नहीं होता। और अगर सारी दुनिया मिलके अल्लाह ताला की, अल्लाह माफ़ करे, तनकीस बयान करे, नक्स बयान करे, तो भी सब मिलके ये सब कर रहे हो, तो तब भी उसकी बादशाहत में एक रत्ती बराबर भी कमी नहीं होगी। और फिर हम क्यों उसकी हम्द बयान करें, क्यों उसकी मदह करें, उसका क्या फायदा है? तो उसका फायदा इंसान को है, अल्लाह ताला को कोई फायदा नहीं है। इसके जरिए इंसान अल्लाह ताला का महबूब बन जाता है, उसके मुकर्रबीन में शामिल हो जाता है। अब इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला को पसंद है मेरा बंदा मेरे हम्द बयान कर रहा है, वो उसको अच्छा लगता है, तो वो बंदा अल्लाह ताला के हाँ अपने रैंक्स रेज कर देता है, वरना ऐसा नहीं कि उसको कोई फर्क पड़ जाता है। और दूसरी क्या बात है, जब आपके रैंक्स रेज होंगे अल्लाह ताला के पास, तो आपकी दुआ भी ज्यादा कबूलियत के चांस है, तो आपकी दुआ भी कबूल होने का ज्यादा करीब है उस चीज से कि कबूल हो जाए। और वैसे भी जो हम्द है उसमें अल्लाह ताला की तारीफ भी है। जब आपने मैंने आपको बताया था ना अल्हम्दुलिल्लाह के बारे में, अल का क्या मतलब, सारी की सारी तारीफ और शुक्र दोनों इसके अंदर आती हैं। तो शुक्र भी अदा करने से अल्लाह ताला बहुत राजी होता है इंसान से, अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। फरमाया ना, ला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा, तो आपकी दुआएं ज्यादा कबूल होंगी जब आप शुक्र अदा करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लेके आप बैठ के अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर किया करें और शुक्र के जज्बात अपने अंदर लेकर आए। हर वक्त एक गिले शिकवे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं हुआ, मैंने ये दुआ की थी ऐसा नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा कमी रह गई, इस चीज़ का नुकसान हो गया, नहीं, उन चीज़ों को सोचिए जो मेरे पास हैं और वो बहुत सारी हैं। हम इस कदर नाशुक्रे हो गए हैं कि हम बहुत सारा कुछ हमें मिल जाए ना, मसलन हम किसी सफर पे जा रहे हैं, वो सफर बड़ा अच्छा गुजरा लेकिन उसके अंदर कोई एक खराबी आ गई, और हम जब वापस आते हैं तो हम वो जो सारे सफर में अच्छाइयाँ हुई वो कोई बयान नहीं करते, बस बार बार उसी की गर्दन लगाए रखते हैं कि जो हमारे साथ वो एक मसला पेश आ गया था, आए पता है तुम्हें कैसे हुआ, पता है ये हुआ, जिसको लेके बैठे उसको वो ही बताना शुरू कर दिया। तो हमारी ना आदत नाशुक्री की बहुत ज्यादा हो गई। हमें अपने अंदर शुक्रगुजारी पैदा करनी। अल्लाह ताला ने कुराने पर करीम में फरमाया, वकलीलुम मिन इबादी अशुकूर, मेरे बहुत ही कम बंदे शुक्रगुजार हैं, बहुत कम बंदे हैं जो शुक्र अदा करते हैं, यानी बंदों में से कम ही हैं जो शुक्रिया का भी मतलब इतना एहसास रखते हैं कि हमें शुक्र अदा करना। तो हम थोड़ा सा टाइम लेके अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ नेमतें हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं। एक-एक नेमत को पकड़ के सोचें, उन लोगों को सोचें जिनके पास वो नेमत नहीं है, और फिर सोचें अगर मेरे पास भी ना होती तो क्या होता, अब ये वाली चीज़ मेरे पास है, फलां के पास नहीं है, अगर मैं भी उसकी जगह पे होती और मेरे पास भी ये ना नेमत होती, मिसाल के तौर पे शौहर नहीं है किसी के पास, किसी के पास औलाद नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास अमनो अमान नहीं है, किसी के पास बिनाई नहीं है, किसी के पास अक्ल और समझ की कुव्वत नहीं है, किसी के पास सेहत नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास चैन और सुकून नहीं है, किसी के पास और माश के वसाइल नहीं है, जॉब नहीं है, किसी के पास काम कारोबार नहीं है, किसी के पास इस्लाम की नेमत नहीं है, किसी के पास कुरान की नेमत नहीं है, किसी के पास हिदायत के रास्ता ही नहीं है, दिखा ही नहीं है उसको वो रास्ता, यानी बेशुमार नेमते हैं, बेशुमार नेमते हैं। आप इनके ऊपर गौर कीजिए और इन नेमतों को सोचिए कि मेरा रब कितना करीम है जिसने मुझे ये सारी नेमतें अता की। और फिर हम्द के अंदर तारीफ भी है, तारीफ है कि अल्लाह ताला सारी कायनात तेरी मखलूक है और हर नेमत तूने अता की, तेरी कितनी तारीफ है। तो आप इस तरह से अल्लाह ताला की जुबान से भी हम्द बयान करें और फिर देखें जिस्म से भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, कैसे, उसकी इताअत करके, सिर्फ जुबान से नहीं बयान करना, अगर शुक्र का जज्बा आ जाए जैसे शुक्र अदा करना चाहिए, तो अल्लाह ताला बंदे से इतना राजी हो जाता है और उसको बहुत सारी नेमतें देगा। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, उन्होंने जैसे अभी आपको बताया कि अल्लाह ताला फरमाते मैं बहुत ज्यादा दूंगा, बहुत ज्यादा दूंगा, बहुत इजाफा कर दूंगा, वो नेमत भी कायम रहेगी और अल्लाह ताला और ज्यादा भी देगा। बल्कि हदीस में आता है अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से राजी हो जाता है जो एक घूंट पानी का पिए और उसका शुक्र अदा करे, और एक लुकमा खाने का खाए और उसका शुक्र अदा करे। तो आप शुक्र अदा कर रहे हैं सहरी इफ्तारी के वक्त कि आप एक घूंट भी पीते हैं, ये नहीं कि घटा घट पानी पिया और उसके बाद चलो अगर याद आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दी। अक्सरियत तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहना ही भूल जाते हैं, यानी एक घूंट भी आप पिए ना और उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो अल्लाह ताला राजी हो जाता है। अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि उस पे भी राजी हो जाता है। क्या एक दो बोल ही है, अल्हम्दु और लिल्ला बस, और एक लुकमा खाने का कहता है तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्लाह ताला ना सिर्फ इस पे राजी हो जाता है, बल्कि जानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुछ शुक्र के कलिमात भी सिखा दिए, जो खाने के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपके पिछले सारे गुनाह माफ भी हो जाएंगे। वो क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको आता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अत'अमनी हाजा, और हाजा ताम भी है इसमें, हाजा भी है, वा रज़क़नी ही मिन गैरी हौली मिन्नी वला कुव्वत इल्ला, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे ये खाना दिया बगैर, और ये रिस्क मुझे बगैर किसी मेरी मेहनत, बगैर मेरी किसी काबिलियत, बगैर मेरी किसी कुव्वत के मुझे दे दिया ये रिस्क। अल्लाह ताला खुश तो होगा ही और गुनाह भी माफ कर देता। नमाज में भी आप देखें हम सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, कुरान करीम में भी अल्हम्दुलिल्लाह से बात शुरू होती है, कुरान शुरू होता है नमाज में सना के बाद, यानी उसमें भी बेसिकली सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का है ना, तो उसमें भी हम्द है अल्लाह ताला की, तो अल्लाह की तारीफ और उसका शुक्र है, और कुरान में भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने जब अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, या आपने जब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर दिया और उसकी तारीफ कर दी, तो आपने बेसिकली मान लिया कि वो रब सारे जहानों का उसकी तरफ से ही है, जितनी नेमतें मुझे मिली हुई हैं और जितने लोगों को जितनी नेमतें मिली हैं वो सब उसकी तरफ से हैं, और वो ही है जिसने अता किया, और उसके ऊपर उसी की तारीफ है और उसी का शुक्र है, और खुद इंसान झुक झुक जाए इस चीज़ में। और आप देखें कि नमाज में हम लोग वहां पहुंचे थे ना सज्दे की बात के ऊपर, तो सज्दे में भी इंसान अल्लाह ताला के आगे झुक जाता है, मतलब जब वो खड़े होके उसने शुक्र अदा कर लिया, फिर वो जब रुकू में गया और रुकू से भी खड़ा हुआ तो उसने क्या कहा था, रब्बना वलकल हम्द, ए अल्लाह हम्द तेरे लिए, ए हमारे रब तेरे लिए है सारी तारीफ, तेरे लिए है सारा शुक्र। तो पहले खड़े होके भी, कयाम में भी उसने शुक्र और हम्द और बयान की, और फिर रुकू से उठ के भी उसने यही बयान किया, और उसके बाद वो सज्दे में चला जाता है। आपने कभी सज्दे की हालत पे गौर किया है कि सज्दे की हालत कितनी ज्यादा आजी की हालत है, कितनी ज्यादा जिल्लत की हालत है? कभी आप वैसे अपना नाक जमीन पर रखेंगे, अपना माथा रखेंगे, और कभी आप वैसे अपने घुटनों के बल पड़े होंगे इस तरह? नहीं। तो इंसान जब ऐसे हालत में होता है तो वो अपने आप को पूरी तरह गिरा देता है किसी अजीम हस्ती के आगे। इसी वजह से हम किसी और के आगे ऐसे सजदा नहीं कर सकते, ना रुकू में जा सकते, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के सामने हम कर सकते हैं। और फिर ये वो वक्त है जिसमें इंसान अल्लाह ताला से बहुत करीब होता है। बस जुद वक्त करीब का मतलब यही है कि सजदा कर और करीब हो जा, सजदा कर और करीब हो जा, यानी कि इंसान उसमें है सजदे की हालत के अंदर, इंसान तजल्लुल के अंदर है, आजी के अंदर है, इंसान अपने आप को खुद दिखा रहा है कि या अल्लाह मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं बेकस हूँ, और ये है मेरा मकाम, इससे ऊपर मेरा मकाम नहीं, असल मेरी जगह यही है कि मेरा सर तेरे कदमों में पड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया ना, जब इंसान सजदे में होता है तो असल में उसका सर अल्लाह ताला के कदमों में पड़ा होता है। तो मैं उस अजीम हस्ती के आगे पड़ा हुआ हूँ और उसने मुझे सब कुछ दिया है, असल में ये एक शुक्र गुजारी है, अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया और मैं तो किसी भी काबिल नहीं, मेरी ये जगह है, और अगर इससे नीचे भी कोई जगह होती तो मैं उसमें गिर जाता, लेकिन इससे नीचे कोई जगह है ही नहीं, कि मैंने अपनी बड़ा इज्जत का जो मकाम इंसान का चेहरा है उसको जमीन के ऊपर रख दिया, नाक को भी जमीन पे रख दिया, कभी ना इंसान वैसे रखे, माथे को भी रख दिया। तो तू मेरा मालिक है, मैंने तेरे आगे अपना आप बिछा दिया, और मैं तेरा शुक्र तो वैसे अदा कर ही नहीं सकता जैसे करना चाहिए, और वैसे मैं तेरी इबादत कर ही नहीं सकता जैसे करनी चाहिए। तो मैंने अपने आप को तेरे आगे झुका दिया है, बिछा दिया है, मेरी बेबसी है मेरे रब। वो साथ अल्लाह ताला की बड़ाई है इसमें, और साथ अपना तजल्लुल भी है इसके अंदर ना, कि मैं कितने बुरा हूं, और मैंने वैसा नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए। अब मैंने उल्टा तेरी नाफरमानी कर दी, मुझे तो नाफरमानी एक पल भी नहीं करनी चाहिए थी, और मुझे तो हर वक्त तेरी शुक्रगुजारी और तेरी इताअत करनी चाहिए थी, तू क्योंकि तू इतना बड़ा है, लेकिन मैंने अपने आप पे जुल्म भी कर दिया है। मैंने इसीलिए मैंने आपको वो तस्वीर भी बताई थी ना, जिस जो सज्दे की है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फिरली, उसमें इंसान अपने गुनाहों की माफी भी मांगता है। तो आप ये सारी तस्बीहात भी याद करके सब भी मांग सकते हैं सज्दे में, सिर्फ एक सुभान रब्बी अल आला सिर्फ नहीं, आप ये सभी मांग सकते। तो आप और मैं चूंकि अल्लाह ताला का हक तो कभी दे ही नहीं सकते ना, तो हमने अपने आप को गिरा भी दिया और अल्लाह ताला को तस्लीम कर लिया कि वो सबसे अजीम और तू आला है अल्लाह, मैं कुछ नहीं, मैं तो ये हूँ और तू पाक है मेरे रब, तेरी जात पाक है, और मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ। तो इंसान इस तरह से करके अपने आप को झुका के और अल्लाह ताला की तारीफ बयान करता है, उसकी सुबहान रब्बी, सुबहान में भी मैंने आपको जैसे बताया अल्लाह ताला को हर एक किस्म की कमजोरी से पाक करा देना, तेरे अंदर तो कोई कमजोरी और ऐब नहीं, हाँ मेरे अंदर जरूर है, मैं तो इस हालत में हूँ कि मैं अपने आप को बिछा रहा हूँ और तू मुझे माफ कर दे। आपको पता है सजदे में इंसान दुआएं करे तो वो दुआएं भी ज्यादा कबूल होती हैं, उन दुआओं के चांस भी ज्यादा हैं कबूलियत के। लिहाजा इंसान अपने सजदे की हालत को अपनी दुआओं के लिए रखे कि मैं इस टाइम पे अल्लाह ताला से दुआ करूं, और सजदे की हालत में चाहे वो फर्ज नमाज है चाहे वो नफल नमाज है, अरबी जुबान में कुछ दुआएं जो मसनून हैं वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो मसनून दुआएं ना बहुत जामे हैं, बहुत जामे। मैं और आप इतनी लंबी लंबी बातें करें, वो बातें समझ लें समुंदर को कूजे में बंद कर देना है मसनून दुआओं में। हम इतनी लंबी बात करते हैं, वो छोटी सी बात के अंदर सारी बात कह दी जाती है, सारी बात आ जाती है उसके अंदर। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम दुआ करते हैं आफियत की, तो आफियत में भी क्या है, आफियत में भी आपने सारी भलाई मांग ली और सारी तरह के शर से भी पनाह मांग ली, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बेहतरीन दुआ है ना वो आफियत की दुआ है, आफियत मांगे अल्लाह ताला से, हर एक बुराई से महफूज रखना, हर एक शर, हर एक फितने। अब मैं कितनी लंबी बातें बोल रही हूँ, लेकिन जब मैंने कह दिया आफियत दे देना तो सारी भलाई दे देना और सारे किस्म के शर और मुश्किलों से और परेशानियों से और मसाइब से और बीमारियों से और हर किस्म की गम से और दुख से और सब चीज़ों से इनसे बचा के रखना और सारी भलाइयाँ दे दे, ये आफियत है। इसीलिए मसनून दुआएं कितनी प्यारी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफवा वला आफियता, कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ आफू का, आफू क्या माफी, और आफियत जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, और कहाँ पे, अब हमें तो आए भी ना ये बात करना, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा सिखा दिया, फिर दुनिया वल आखिर, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लेकिन दुनिया में भी तो हमें शार के से बचना है, हर फितने से बचना है, हर बुराई से बचना है, और आखिरत में भी हर किस्म के शर से बचा लेना, हर किस्म की बुराई से बचा लेना, और हर किस्म की भलाई दे देना, दुनिया में भी देना और आखिरत में भी, और दुनिया में भी माफ कर देना आखिरत में भी जाके माफ कर दे। तो छोटी सी दुआ और बात सोचें कितनी बड़ी बयान कर दी गई, कि सब कुछ ही मांग लिया गया। तो ऐसी छोटी छोटी दुआएं आप इनको याद कर लें, आप को कोई बहुत लंबी नहीं भी आती, मुख्तसर वाली याद कर लें, और आप देखेंगे मसनून दुआएं छोटी छोटी ही हैं, आप उनको अगर याद कर लेंगे तो आपको कितनी काम आ सकती हैं कि आप अपने सजदों में उनको शामिल कर लें। तो आपने अपने सजदे में खूब खूब दुआएं मांग ली, खूब खूब दुआएं मांग ली, और ध्यान के साथ मांगा कि मैं किस हस्ती के आगे पड़ी नहीं हूं, किस हस्ती के जिसके हाथ में मेरा सारे काम है, सारे काम दुनिया के भी और आखरत के भी, और वो हस्ती है वो जो कि मेरा पालने वाला है, मेरा रब। देखिए आप जब कह रहे हैं सुभान रब्बी अलाल, मैंने आपको रब के बारे में पहले भी बताया था ना, रब पालने वाला, मालिक भी है तू, मालिक भी तू ही मेरा है ना, खालिक भी तूने ही पैदा किया ना, और पालने वाला भी तू ही है ना। उलमा कहते हैं कि आप ना दुआओं को अगर चाहते ना कि कबूल हो ज्यादा, तो अल्लाह ताला को उसकी रबूबियत का वास्ता दे कि तू मेरा रब है, या अल्लाह तू मेरा रब है। अब यानी अब आप रब को ही कहेंगे ना, अपने मालिक को ही गुलाम जाके कहेगा ना कि मुझे ये चीज की जरूरत है, और किसके पास जाएगा, तू ही तो है मेरा रब, तो मेरे तो तेरे पास ही आना है, और तू ही मेरा पालने वाला है। अब रब ना इतना प्यारा लफ्ज है ना, इसी वजह से अल्लाह ताला ने देखे कितने नबियों की दुआएं कुरान में रब से स्टार्ट होती हैं, रब के लफ्ज से, और अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में जितनी दुआएं सिखाई हैं सारी रब से, रब इरहम हुमा, और रब्बना ज़लमना, और फिर रब्बना आतिना, और रब्बना हबलना, मतलब देखिए आप सारी दुआएं रब रब रब, तो रब का लफ्ज। और इसी तरह हम सज्दे में भी जाकर रब भी कह रहे हैं, और हमने जब रुकू से भी खड़े हुए तो हमने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम। अब देखिए रब, अब रुकू में भी आपने सुबहान रब्बी अल आज़ीम, रब और मेरा रब, कितने मान से इंसान कहता है ना मेरा रब, नहीं ये नहीं कि किसी और का रब, मेरा रब, तू तो मेरा रब है। तो जब इंसान ने कहा कि तू मेरा रब है, तो असल में इंसान अपने आप को ये बता रहा है कि मेरा तो तू ही रब है ना, और तू तो पाक है, और तू वो है जिसने, जो मेरा मालिक भी है खालिक भी है, तू मेरा पालने वाला है। अब देखें जो पालने का लफ्ज है ना, इससे आपको क्या समझ आती है, दुनिया में कौन पालता है, एक बच्चे को कौन पाल रहा होता, उसकी माँ। अच्छा अब जो आप उससे देखें ना, ताकि आपको समझ आए जो पालना होता है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इस जॉब के अंदर, ये बताइए पालने की जॉब में, जब एक माँ एक पालने की जॉब कर रही है, उसमें क्या क्या चीज शामिल है, क्या वो उसको फीडर फेंक के चली जाती बस पीता रहे खुद ही, और एक आके उसका डायपर चेंज करती है बस खत्म हो गया उसकी जॉब फिनिश हो गई, नहीं कैसे पालती है वो। पालना जो है, एक तो ये कि वो 24/7 की जॉब है उसकी, सेकेंडली उसकी हर एक जरूरत माँ पूरी कर रही है, चाहे वो पेशाब कर दे, गंदगी कर रहा है, उसके कपड़े गीले हो गए हैं, वो वॉमिट कर देता है, वो ये नहीं कह सकती कि ओ ये वाला तो मेरा काम नहीं है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पालने का, और पालना मीन्स फीडर दे देना, नहीं सारे काम, वो भूख में है, प्यास में है, उसको गर्मी लग रही है, उसको सर्दी लग रही है, उसको किसी चीज से बचाना है जो शरर की है, या वो बीमार हो गया है तो उसको देखभाल करना है, या वो किसी किस्म की भी उसकी जरूरत ना, वो सब उस माँ के जिम्मे है, वो कोई को पालने वाली वो है, ठीक है, प्लस उसको मोहब्बत देना, शफकत देना, उसकी निगहदाश्त करना, उसकी हर एक तरह से उसको कंफर्ट देना, उसके लिए बेहतरी की चीजें सोचना, ये सारा वो पालने वाली का काम है, ठीक है। जब हम कहते हैं ना रब पालने वाला है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं कि आपको उसने रिस्क दे दिया तो खत्म, नहीं, जब मैंने कह दिया ना रबी मेरा रब, तू ही तो मेरा पालने वाला, मेरी सारी जरूरियात तुझने तो पूरी करनी है, मेरी निगहदाश्त तूने ही तो करनी है, मेरी हिफाजत भी तूने ही करनी है, और उस रब के लफ्ज के अंदर ना मोहब्बत है, जो माँ पालती है तो वो मोहब्बत भी दे रही है, तो रब पालता है इसका मतलब सारों को रोजी भी वो दे रहा है, सबकी मुश्किलें भी वो दूर करता है, सबकी हाजतें भी वो पूरी करता है, सबको दस्तगीर भी वो है, सारे जहानों को हर तरह से उनकी हर एक चीज का इंतजाम करना वो उसने अपना जिम्मा लिया हुआ है, हर हर चीज का। सब कोई वो दे रहा है, एक अनाज का दाना भी किसी और कोई और नहीं दे रहा, सब कुछ वो ही दे रहा है। और फिर शफकत भी वो ही निछावर करता है, फिर रहमत के खजाने भी वो ही खोल देता है। और उसकी रहमत कितनी है बताएं, मैंने आपको बताया था ना, वो रब वो नहीं है कि आप, यानी जैसे आप कहें कि आपने अपने मिसाल के तौर पे आपने एक बकरी का बच्चा पाला और उसके बाद एक दिन आपने उसको जिबा कर दिया, ये नहीं। वो पालना माँ की शफकत को सोचें कि वो अपनी सारी मोहब्बत निछावर कर देती, वो रब अपने बंदे पे सारी मोहब्बत निछावर कर देता, इसीलिए वो रहमान और रहीम है। रहमान बहुत ज्यादा रहम करने वाला, बहुत ज्यादा, कितना बताएं कितना, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है, इतनी रहमत है उसके पास। और देख लेना, मैंने आपको बताया था कि उसने एक रहमत का, 1 100 में से अपनी रहमत का एक हिस्सा जमीन के ऊपर भेजा हुआ, जिसका एक जर्रा मुझे और आपको मिला है। और फिर उस एक जर्रे के जरिए हम अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, बहन भाइयों से भी, दोस्त अहबाब से भी, और हम अपनी औलाद से जो मोहब्बत करते हैं वो उस एक जर्रे के जरिए है। हम ये नहीं कह सकते ओ मैं तो अपने माँ बाप से मोहब्बत कर रही, अब तो खत्म ही हो गई मेरी मोहब्बत, वो तो सारी उधर मैंने दे दी है, अब तो मेरे लिए किसी और के लिए बच ही नहीं गई। नहीं, अब जो आप औलाद से मोहब्बत करते हैं, आप सोचें कि आप अपने आप को हलकान कर देते हैं अपनी औलाद के पीछे, अपनी खुशियां भी कहते हैं कि औलाद को ही दे दें, हत्ता के दुआओं में भी इंसान अपनी दुआएं तो भूल ही जाता है, अपनी औलाद के लिए ही दुआएं करता रहता है। ये उस एक जर्रे की वजह से जो उसकी रहमत के 100th हिस्से में से जर्रा मुझे और आपको मिला। और कयामत के दिन अल्लाह ताला ये एक हिस्सा, जो 100th हिस्सा है ना, वो भी वापस ले लेगा, उसके पास पूरी 100 रहमतें उसकी। फिर वो कितनी रहमत इछावर करेगा कि शैतान को भी उम्मीद हो जाएगी कि शायद आज मेरी भी बख्शी हो ही जाए। और वो इन रहमतों के साथ मुतवज्जे है। आप सोचे 99 रहमतें अभी भी उसके पास ही हैं, 100th रहमत एक हिस्सा सिर्फ उसने जमीन पे उतारा है ना, तो 99 जिसके पास हैं, आप सोचें कि मैं और आप कितने मेहरबान होते हैं, हम अपने आप को बहुत रहम दिल समझते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कैसे हलकान होते हैं। तो अभी भी वो 100th हिस्सा पूरा का पूरा मुझे और आपको नहीं मिला हुआ। कैन यू इमेजिन, वो 99 हिस्से जो हैं, जो उसके पास हैं। हम कहते हैं, ये कोई हदीस नहीं है, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने लगा, 70 का भी वर्ड छोटा है, ये भी नंबर छोटा है। इमेजिन करें जिसके पास 99 रहमतों के हिस्से हैं, उसकी मोहब्बत कैसी होगी। उससे जब आप आगे उसके गिर जाते हैं ना, और उसे गिर के मांगते हैं ना कि मैं सजदे में पड़ा हुआ, मेरा रब तो तू ही है, देना तो तू नहीं है ना, सिर्फ वो तू नहीं है, मुझे पालने वाला तो तू ही है ना, तो खुद सोचें कि उस रब को किसी से पूछना नहीं है, देने से पहले उसको किसी की परमिशन नहीं लेनी, और या फिर ऐसे किसी से उधार लेके नहीं देना कि चलो उसमें ही कोई मुश्किल हो जाती है, इंसान तो कहीं से भी उसके पास नहीं होता, किसी से मांग मूंग के दे देता है, ठीक है उसने वो भी नहीं है, और उसके लिए मुश्किल भी नहीं है कि कोई बड़ा प्रोसेस हो लंबा, कई चीज़ें होती हैं हमें मिलनी होती है, हम एप्लीकेशन देते हैं, ये करते हैं, फिर उस तक पहुंचती है, फिर वो अप्रूव करते हैं, फिर अगर आगे से कहीं से अप्रूवल लेते हैं, खुद भी करना हो तो पहले सोचते हैं समझते, नहीं उसकी, उसने देना है तो उसको कहीं से ना अप्रूवल लेना है ना उसके पास हमारी एप्लीकेशन पहुंचने में देर लगनी, जो आपने अपना सर सजदे में रख दिया है ना, तो बस आप डायरेक्ट उसके साथ बात हो रही है, वो आपकी तरफ मुतवज्जे है। और वो बकील भी नहीं है, बकील भी चलो एक होता है ना, बंदे के पास बड़ा कुछ होता है, एक आदमी के पास उसे और बड़ा कुछ, बस दिल ही नहीं बड़ा है, बड़ा कुछ लेकिन दिल बड़ा नहीं है। अब दें तो कैसे दें, मर मर के देते हैं, क्या ए पहले भी तो दे दिया था, फिर इतना, फिर दोबारा दे दूं, फिर दे दूं, ये तो बिगड़ जाएंगे, ये तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। कैन यू इमेजिन के जब से कायनात है, जब से उसने अपनी मखलूक को पैदा किया, कौन खिला रहा है सबको, कौन पिला रहा है सबको, कौन चला रहा है सबको, कौन पाल रहा है सबको। और सिर्फ अपनी जमीन को ना ना देखें, सितारों सैयारों पे पल्ला जाने कितनी मफलूक है, उसके कितने लश्कर हैं, हमें क्या पता। उन सबको कौन चला रहा है, उनकी सारी जरूरियात कौन पूरी कर रहा है, उनका रब कौन है। वो अल्लाह ही है ना, लेकिन उसके खजाने आज तक खत्म नहीं हुए। वो देता ही जाता है, देता ही जाता है, देता ही जाता है, और उसको परवाह नहीं है। इसीलिए हदीसे कुदसी है ना, ऐ मेरे बंदो, तुम्हारे अव्वल आखिर जिन इन सब आ जाएं, जितने भी हैं जो भी मौजूद हैं सब आ जाएं। यानी अव्वल आखिर से मतलब है जो पिछले पैदा हुए वह मर गए हैं ना, वो भी खड़े हो जाएं, और जो इस वक्त हैं वो भी सारे खड़े हो जाएं, और जो कयामत तक पैदा होने वाले हैं ना वो भी आज ही खड़े हो जाएं। और अल्लाह ताला फरमाता है सारे मुझसे मांगे, और इतना मांगे, इतना मांगे जो इनके दिल में आए मांगे। और इसमें लाइन लगाने की जरूरत नहीं है कि बारी बारी जी आप देखें, हर एक की अपनी बारी से आए ना, फिर इस तरह सारे एकदम शुरू हो जाएंगे तो फिर तो सही नहीं है। नहीं, लाइन लगाओ, टिकट लो, आपकी टिकट देख के आपको नहीं, सारे एक साथ ही बोलना शुरू कर दो, कोई बारी के इंतजार की जरूरत नहीं, सब मांगो एक साथ मांगो। तो अल्लाह ताला सबको फरमाते हैं मैं सबको देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, देता जाऊंगा, और मेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी। आपने एक सुई ले आप और समंदर में डालें और निकालें, आप मुझे बताएं समंदर के पानी में कितनी कमी आई। कितना कम हुआ समुंदर का पानी जो सुई के डबोने से, कितना कम हुआ कि जितना सुई पे लग गया हो तो कितनी कमी आ गई, कितना कम हुआ, कुछ भी नहीं कम हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है इतनी भी नहीं कमी आनी मेरे खजानों में, फिर उसको क्या परवाह है। सारी दुनिया जो है उसके नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, तो उसने क्या, पूरी दुनिया भी किसी को दे दे तो उसको परवाह नहीं। अब देख लें जन्नत में जो आखिरी जन्नती जाएगा ना, आखिरी लास्ट वन, उसके बाद नहीं किसी ने जाना, पता है उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, इतनी जितनी ये पूरी जमीन है। ठहरे अभी खत्म नहीं हुआ, ये पूरी जमीन, पूरी जमीन सब किसी को, एक बंदे को मिल जाए सोचे उसका क्या हाल हो। एक कंट्री मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक शहर ही मिल जाए तो बड़ी बात है, पूरी जमीन मिलना कितनी बड़ी बात है। यही नहीं, 10 जमीनें और इस जैसी। और एक हदीस में तो ये भी आता है जो जो आखिर में जन्नत में जा दाखिल होगा, यानी अब वो लोएस्ट ग्रेड पे है जन्नत में, जाहिर है जो आखिर में गया ना वो सबसे निचले दर्जे पे है, ऊपर वाले दर्जों की तो अभी आप छोड़ दें बात, सबसे निचले वाले दर्जे के अंदर जो है वो ख्वाहिश करता है कि या अल्लाह मैं हमेशा के लिए सारे अहले जन्नत की दावत करना चाहता हूँ हमेशा के लिए, और उसको दावत का इख्तियार दे दिया जाए तो उसके अकेले के इतने खजाने होंगे कि हर दिन वो सारे अहले जन्नत की दावत करता रहे, जियाफत करता रहे, उसके खजाने ही नहीं कभी खत्म होने। अल्लाह अकबर। तो जिससे मांग रहे हैं ना, सोचें वो कितना बड़ा है और उसके पास कितने खजाने हैं, और उसके पास रहमतों के कितने खजाने हैं, और उससे उसकी रहमत मांगे तो उसकी रहमत आपने मांग ली ना तो सब कुछ ही मांग लिया, उसकी रहमत होगी तो सब कुछ ही मिल जाएगा। या रहमानु अरहमनी, या रहमानु अरहमनी, या रहमानु या रहीमु अरहमनी, इस तरह से करके मांगेंगे कि ए रहमान इरहमनी मुझ पे रहम कर दे, ए रहीम इरहमनी मुझ पे रहम कर दे। तू क्यों, तू तो रहमान और रहीम है ना, उसके नामों से वसीला ले, उसके नामों को पुकार के और उनके जरिए उसको पुकारे, फिर वो जिसको चाहे अता कर दे। हर चीज का तो मालिक वही है, दुनिया में भी और आखरत में भी, चाहे आपने दुनिया की चीज मांगनी चाहे आखरत की, वो चीज उसकी मिल्कियत से बाहर थोड़ा ही है, हर चीज उसकी ही तो है, वो जो मर्जी जिसको मर्जी चाहे अता फरमाए। तो जब सजदे में जाएं इस तरह से दुआएं मांगे, इस तरह से दुआएं मांगे, अब पड़े रहें सजदे के अंदर जितनी देर आपका दिल ना भर जाए, और दुआएं करते जाएं। तो आज की दुआ मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने ये दुआ अल्लाहुम्मा अस्अलुकल अफ्व वल आफियत फिद दुनिया वल आखिरा ये दुआ मांग ली, और जो जिक्र है जिस जिक्र के जरिए आपकी दुआएं कबूल हो सकती हैं, इस जिक्र को करके आप फिर उसके बाद फिर और भी करें अल्लाह ताला की हमद के, लेकिन ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके जरिए दुआएं कबूल होती हैं, लिहाजा आप इसको तो जरूरी करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता। देखिए इसमें सारी अल्लाह ताला की तारीफ है, अल्लाह ताला मैं तुझसे सवाल करती हूँ इसलिए कि सारी हम्द तो तेरे लिए है अल्लाह ताला, तू ही इला है, तेरे सिवा तो कोई इला नहीं, वहदक ला शरीक अलक, तेरा कोई शरीक नहीं, तू अकेला है। अलमन्नानु बदीउ समावाति वल अर्द या जुल जलाली वल इक्राम या हय्यू या कय्यूम, और ये भी अल्लाह ताला के नाम ऐसे हैं या मन्नान या जुल जलाली वल इक्राम या हय्यू या कय्यूम, ये भी अल्लाह ताला के नाम ऐसे हैं कि इनसे भी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई इसमें आजम हो, तो आप इसके जरिए भी दुआ कीजिए और फिर इस उम्मीद के साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा और मेरी बात को वो सुन रहा है और वो मेरा रब है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे उसकी अच्छी इबादत करने की, अच्छी हमें नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और वो अमल हमसे करा ले जिससे वो राजी होता हो। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।